शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओम किस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन, प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन, आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई, एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओ
ओम शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। शिव बाबा की महिमा अपरम्पार है। कितनी महिमा है शिव बाबा की, किसी भी आत्मा की इतनी महिमा नहीं हो सकती है जितनी शिव बाबा की महिमा है। लेकिन जितनी भी महिमा है उन सब में से ऊंची किसको रखेंगे, नंबर वन कौन सी महिमा है जी? नंबर वन महिमा। तो कई कहते हैं वो ज्ञान का सागर है, ये सबसे ऊंची महिमा है। और कोई कहते हैं प्रेम का सागर है, वो सबसे ऊंची महिमा है। तो जो कहते हैं प्रेम का सागर ये पहले नंबर की महिमा है, वो हाथ उठाएं। अच्छा, तो जो समझते हैं ज्ञान का सागर सबसे पहले है वो हाथ उठाएं। उसमें थोड़े कम है, और किसने तो उठाया ही नहीं। हाँ, वो समझे कोई भी हो, भले ज्ञान का सागर हो प्रेम का सागर हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं मैं जब आकर के तुमको आप समान बनाता हूं, तो सबसे पहले कौन से गुण में आप समान बनाते हैं ना, सबसे पहले कौन से गुण में आप समान बनाते हैं? प्रेम में। दुनिया में भी आते ना लोग, आते हैं तो ज्ञान की महिमा इतनी नहीं करते, परंतु प्यार इतना मिला वो महिमा करते, बहुत महिमा करते, बहुत प्यार मिला। शुरू में भी यज्ञ में भी बहुत आए, लेकिन फिर भागंती भी हो गई। परंतु जो भागंती हो भी गए ना, उन्होंने बाबा का जो प्यार लूटा था वो अंत तक नहीं भूले। ज्ञान तो भूल गए होंगे, लेकिन जो बाबा ने उनको प्यार दिया वो प्यार उन्होंने अंत तक याद किया। बाबा से बहुत प्यार मिला। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी सबसे पहले प्यार का सागर बनना है, इसमें बाप समान बन जाओ तो देखो कितनी आत्माएं और आकर्षित होकर के आएगी। आती है ना, प्यार मिला, कॉन्फ्रेंसेस में भी आती है, अनुभव सुनाते हैं, बहुत प्यार मिला। ज्ञान तो भूल जाते हैं। तो प्यार का सागर है बाबा, इसमें सबको पास होना है। तो पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कभी भी अपने मुख से कोई कटु वचन, कोई क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, कितने सारे अवगुण हैं, पहले तो आंखों से दिखाई देते हैं, फिर वो मुख से निकलते हैं, फिर कर्म में आते हैं और इंद्रियों द्वारा। तो बाबा कहते हैं तुम्हें प्यार का सागर बनना है। भक्ति मार्ग में भक्त लोग भगवान से भीख मांगते हैं, दया करो, रहम करो, कृपा करो, प्यार करो, ये नहीं मांगते हैं, कृपा रहम दया। और बाबा कहते हैं मैं तो वो तुम पर सब लुटाता हूँ, लेकिन पहले पहले प्यार लुटाता हूँ। तो बाबा की मुरली क्या है, जिसको बाबा कहते हैं लव लेटर है, ये प्यार प्रेम पत्र है बाबा का, जिसमें बाबा हम बच्चों पर कितना प्यार लुटाते हैं। तो आज भी बाबा ने इसी की महिमा बहुत की है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 14/5/2026 है। मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता, ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। किसी को रंज, नाराज, नाराज कहो या तंग कहो, रंज, तंग करना भी एक प्रकार का नाराज ही करना है। किसी को रंज मत करो, तंग मत करो, नाराज नहीं करो। प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? ऐसे कौन से ख्यालात है, विचार है, जो सदा चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? बहुत बहुत है विचार, बहुत ख्यालात बाबा देते रहते हैं। अगर वो सदा ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। हाँ, ये भी लिस्ट बन सकती है, कौन से ख्यालात सदा चले तो खुशी कभी गायब नहीं होगी। उत्तर है, बाबा ने कई बताए हैं, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, ये ख्यालात सदा चलते रहे। अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं और फिर क्या होगा? फिर ये खानियां, रत्न, रत्न अनेक, ये खानियां आदि सब भरपूर हो जाएंगी। वहां सतयुग में हमें सोने के महल बनाएंगे। सोचो तो सही, कितना सोना होगा। अभी सरकार कहती है सोना मत खरीदो, लेकिन सतयुग में तो सोना ही सोना होगा, सोना ही सब सोना होगा। सब भरपूर हो जाएंगे वहां सतयुग में, हम सोने के महल बनाएंगे। दूसरा क्या सोचो, हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है, हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। तो कितना उत्तम है, देवताओं से भी उत्तम है, ये भी अगर सोचो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। तीसरा, हम सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा, अमर कथा सुन रहे हैं भगवान से, सच्ची सत्य नारायण की कथा, अमर कथा सुन रहे हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। और भी बहुत ख्यालात है, वो अगर वही ख्यालात करते रहो तो कभी मन में दुख नहीं आएगा, कोई रंज नहीं होंगे, कष्ट नहीं महसूस होगा। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं, ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है भगवान की, ये श्रीमत है मुरली, तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है बाप द्वारा। याद की यात्रा बहुत मीठी है, बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। कितना प्यारा, कितना मीठा शिव भोला भगवान। तो बाबा कहते हैं जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा, मीठा लगेगा। सैक्रीन है ना, बाबा सैक्रीन है। एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो दुनिया में जो प्यार है वो बाबा कहते हैं कोई प्यार नहीं है, सब स्वार्थ है। तो बाबा कहते हैं एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी सब मार देते हैं, है ना, मार ही देते हैं, प्यार नहीं देते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है, बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों ने जाना है। बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं, कितना बड़ा हूं, हम जो हूं जैसा हूं उसको समझना है ना हमें। तो बाबा पूछते हैं कितना बड़ा हूं, कितना बड़ा हूं बताओ, हमारा बाप कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। बाबा कहते हैं बिंदी है। कितना बड़ा, क्या क्या सोचते हैं मनुष्य भगवान के लिए, और बाबा कहते हैं मैं तो बिंदी हूं। अब बताओ कि बाबा कितना बड़ा है, बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है। तो कहते हैं मैं तो बिंदी हूं, और बिंदी को तो कोई जानते ही नहीं है। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं वो बिंदी है, बाबा कहते हैं बच्चे भी भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, अब बिंदी को कैसे याद करें, कैसे याद करेंगे बिंदी को। बाबा ने उसकी युक्ति बताई है, बिंदी को कैसे याद करना है। बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना, जो स्वयं बिंदी है आत्मा, वो बिंदी जब अपने को अनुभव करेंगे तभी तो उस बिंदी को याद कर सकेंगे। अगर हम देह अभिमान में है तो उस बिंदी को याद नहीं कर सकेंगे। तो बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना। आत्मा जानती है हम बिंदी है ना, आत्मा भी बिंदी है, हमारा बाप भी ऐसा ही है, बिंदी है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है। पाठ तो आत्मा ही बजाती है, बाप है सबसे स्वीट। सब याद करते हैं हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ। अब तुम बच्चों को ये निश्चय है कि हम जिसको बिंदी कहते हैं वो बहुत सूक्ष्म है बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, परंतु उनकी महिमा कितनी भारी है। इसीलिए एक वाक्य में क्या परमात्मा की पहचान देते हैं, परमात्मा बिंदु में सिंधु है, है ना, ये परमात्मा की पहचान है। परंतु महिमा कितनी भारी है, भल महिमा गाते भी हैं, ज्ञान का सागर शांति का सागर गाते जाओ, परंतु समझते नहीं है कि वो कैसे आकर के ये सब देते हैं। जिसकी महिमा गाते हैं जरूर उसने ये सब दिया है ना, तो कैसे आकर के देते ये तो किसको पता नहीं। तो कैसे आकर के सुख देते हैं, मीठे मीठे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ना बच्चे, आज बाबा कहते चिल्ड्रन, मीठे मीठे चिल्ड्रन, हर एक समझते हैं कौन कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत मिलती है सर्विस करने से। बहुत मनुष्य बीमार रोगी हैं, बहुत हैं जो हेल्दी भी हैं, स्वस्थ भी हैं। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी थी, एवरेज 125-150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं, ये तो बिल्कुल ही छी छी दुनिया है। सत्युग की महिमा बाबा गाते हैं, फिर कलयुग के लिए वैराग्य दिलाते हैं। ये तो बिल्कुल ही छी छी दुनिया है, जो बाकी थोड़ा समय की है, बस थोड़ा समय ही है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि अभी तक बनाते रहते हैं, जानते नहीं है ये बाकी कितना समय होगी। मंदिर आदि भी बनाते रहते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, अब उनकी आयु बाकी कितने समय होगी। जो कुछ भी बड़ा बड़ा बनाते रहते हैं, बाकी कितना समय उनकी आयु और होगी। तुम जानते हो ये तो टूटे की टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते हैं, मना नहीं करते हैं, क्योंकि रहना तो है ना घर में। तुम अपने ही घर में क्या करो, अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ, बिगर कोई खर्चा। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। अब जितने सेंटर नहीं है उससे तो 10 गुना गीता पाठशालाएं है ना, चारों ओर कितनी गीता पाठशालाएं चलती है। तो बिगर कोई खर्चा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है इस नॉलेज से। तो ये भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है, जब तमो प्रधान बने तब जास्ती दुख होता है। जितना जितना तमो प्रधान बनते जाएंगे, और बनते जा रहे हैं तो और बनते जाएंगे तमो प्रधान, उतना दुनिया में दुख अशांति बढ़ती जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे, फिर जय जयकार हो जाएगी, दुख भी अति में जाएगा, फिर बाबा कहते हैं जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है, सो फिर प्रैक्टिकल में देखना है। तैयार है देखने के लिए? हाँ, बाबा कहते देखना है प्रैक्टिकल में। स्थापना का साक्षात्कार भी बहुतों ने किया है, सत्युग का भी साक्षात्कार किया है, तो विनाश का भी साक्षात्कार किया है। शुरू में तो बहुत हुए थे। छोटी बच्चियां बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था, पर साक्षात्कार बहुत करती थी। हाँ, पर वंडर तो ये था कि बहनें साक्षात्कार ज्यादा करती थी, भाई नहीं करते थे। वैसे भी भाई तो थोड़े थे, पर बहनें साक्षात्कार बहुत करती थी, घर बैठे भी साक्षात्कार करती थी। तो बाबा कहते हैं छोटी बच्चियां भी बहुत साक्षात्कार करती थी, ज्ञान कुछ भी नहीं था, पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर के स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग का वर्षा तो सब बच्चों को मिल जाएगा, लेकिन पुरुषार्थ किसका करना है? बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। तुम बच्चों को बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं, वो थोड़ी जानते हैं, दुनिया वाले ये थोड़ी जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। बाप कहते हैं मैं हूँ दाता, अब दाता हूँ मैं, तुमको देने आया हूँ। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। बाप कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे, सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी बुद्धि में ये अब आया है, ये बातें अभी आई है कि हम पहले कितने सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान बन गए हैं। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में अभी आई है। आगे थोड़ी समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। बाबा का बनने से पहले ये थोड़ी पता था कि हम सतयुग में हम ही विश्व पर राज्य करते थे। तुम विश्व के मालिक थे फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया है 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। ये विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। कैसे विश्व के मालिक थे, स्वर्ग के मालिक थे, फिर कैसे 84 जन्म लेकर सीढ़ी उतरे हैं, ये विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वो भी तो गाते हैं ना, भले शास्त्रों की अथॉरिटी है परंतु वो भी क्या गाते हैं, पतित पावन आओ। गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में ये भक्ति, गंगा स्नान आदि, शास्त्र पढ़ना, पूजा पाठ करना, ये सब बाबा कहते गृहस्थियों के लिए है, सन्यासियों के लिए नहीं है। सन्यासी तो गरबा छोड़ के जंगल में जाकर बस तपस्या करना है। ये सब बाकी जो भक्ति की बातें, ये सब गृहस्थियों के लिए है। तो बाप बैठ समझाते हैं, उनको भी पता नहीं कि सदगति दाता कौन है। सन्यासियों को भी बाप समझाते हैं, तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ, मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, पावन बनाता हूँ पर उसके लिए क्या करता हूँ, पढ़ाने के लिए आता हूँ। ये क्यों बाबा कहते हैं मैं तो टीचर बन करके तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ? ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो। टीचर से कभी कोई स्टूडेंट कहेगा क्या, टीचर मुझे पास कर दो, मुझ पर कृपा करके मुझे पास कर दो? अरे पढ़ो ना, पढ़ोगे तभी तो पास होगे, ताकि टीचर कृपा थोड़ी करेगा। तो बाबा ऐसे कृपा नहीं करते। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो, मैं तो टीचर हूँ, तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो। हाँ, कितनों से आशीर्वाद लेते आए हैं, माँ बाप से भी आशीर्वाद लेते आए हैं, गुरु से भी लेते आए हैं, बाकी टीचर से आशीर्वाद लेंगे क्या? वो कहेगा तुम पढ़ो, आशीर्वाद हाँ तुम पास हो जाओगे, ऐसे थोड़ी कहेगा। आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो, अब आकर माँ बाप की मिल्कियत का मालिक बनो, और आशीर्वाद क्या करेंगे? माँ बाप भी आशीर्वाद क्या करेंगे, आकर के तुम मिल्कियत का मालिक बनो, यही आशीर्वाद माँ बाप भी करेंगे ना। लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो, यहाँ तो कृपा की बात ही नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। ये भी किसको पता नहीं है कि बाबा बिंदु है, एक बिंदी है बाबा कहते हैं, किसी को भी पता नहीं है। अभी तुमको बाप ने बताया है, सभी कहते भी हैं परम पिता परम आत्मा, गॉड फादर सुप्रीम सोल। तो परम आत्मा ठहरे ना, वो भी आत्मा है लेकिन परम आत्मा ठहरे ना, वो है सुप्रीम। बाकी सब आत्माएं हैं ना, सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वो आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं? किसी को की भी बुद्धि में ये नहीं होगा। तुम अभी जानते हो श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। अब गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है तब से आयु शुरू होती है। पैदा हुआ उस वो तिथि तारीख वो वहां से गिनती होती है। बाकी तो गर्भ में भी तो था ना, वो बढ़ रहा था पिंड अंदर, लेकिन जब पैदा होता है तब उसका जन्म माना जाता है। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। किसके? श्री कृष्ण के। गर्भ से आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है तब से आयु शुरू होती है। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे। 30-35 वर्ष के बाद ही उसकी फिर सगाई होती होगी, फिर विवाह होता है तो स्वयंवर होता है, तो 30-35 वर्ष लगे ना। तो वो 30-35 वर्ष 5000 से कम करना पड़े। शिव बाबा का तो गिनती नहीं कर सकते, उनकी कितनी आयु है गिनती नहीं कर सकते। शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे, वो भी मुसलमान आते थे बाबा के यज्ञ में आते थे तो वो भी बगीचा देखते थे, अल्लाह का बगीचा। तो मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। ये नौधा भक्ति तो कोई ने नहीं की। घर बैठे आप ही ध्यान में जाते रहते थे, ऐसे नहीं कि बहुत भक्ति की तब उनको साक्षात्कार किया हुआ, लेकिन बाबा के पास आए और बाबा को देखा एकदम से साक्षात्कार हुआ। तो कोई नौधा भक्ति थोड़ी की उन्होंने। घर बैठे आप ही ध्यान में जाते रहते थे। अब वो तो कितनी नौधा भक्ति करते। अभी जो भक्ति मार्ग में थोड़ा सा साक्षात्कार करने के लिए कितनी भक्ति करते और यज्ञ के आरंभ में तो कोई भक्ति नहीं की तो भी उनको साक्षात्कार होते थे। तो वो तो कितनी नौधा भक्ति करते हैं। अभी बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं, बाबा दूर देश से आया है ये बच्चे जानते हैं, इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। लेकिन बाबा की मुरली सुनते हैं तो उस समय तो बहुत नशा चढ़ता है, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो खुशी का पारा भी चढ़े। हमको कौन पढ़ा रहा है ये याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे, और फिर खुशी चढ़ते चढ़ते आखिर बाबा कहते कर्मातीत अवस्था हो जाए। खुशी में रहे तो उदास हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, रंज करते हैं, कोई गलत काम करते हैं, खुशी खत्म, तो फिर कर्मातीत अवस्था कैसे बनेगी। तो बाबा कहते हैं खुशी का पारा भी चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है। ब्रह्मा बाबा को फुल ज्ञान है ना, श्री कृष्ण की वो अंतिम जन्म की आत्मा है, इस समय ब्रह्मा बाबा को फुल ज्ञान है। फिर सतयुग में गई वो आत्मा, और फिर जब वो गर्भ से निकलेगी तो पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। श्री कृष्ण की आत्मा को पाई का भी ज्ञान नहीं होगा जब वो सतयुग में गर्भ से निकलेगी। अभी फुल ज्ञान है ब्रह्मा को, तो पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। तो बाप आकर समझाते हैं, श्री कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं उस रूप से जैसे दिखाते हैं, ये तो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा बजाई है ज्ञान मुरली। श्री कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं है, वो तो ज्ञान जानते ही नहीं है। ज्ञान मुरली श्री कृष्ण थोड़ी बजाएगा, वो तो ज्ञान जानता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण ही जन नहीं जानते तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। विश्व का मालिक लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना तो फिर ये सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया। हाँ, ये किया वो किया जो भी बताते श्री कृष्ण के लिए, ये सब कहानियां हैं जो बैठ लिखी है। कहते हैं नदी में पैर डाला तो वो नीचे चली गई। दिखाते ना, तो जन्म तो उनका मथुरा में हुआ था, कैद में हुआ था, जेल में हुआ था। तो फिर वासुदेव उनको ले गए कि कहीं राव आएगा, कंस आएगा, उसको मार डालेगा। तो ले गए टोकरी में उनको रखा और जमुना पार की। तो जमुना में उस समय बहुत उफान था, तो कैसे श्री कृष्ण का दिखाते, उसने पैर थोड़ा पर बाहर किया उस टोकरी से, बच्चा था, और जैसे ही पैर रखा जमुना पर, वो जमुना नीचे चली गई। और फिर वासुदेव कैसे जमुना पार किया और सीधा गोकुल ले गया, और गोकुल में उसके नंदलाल जो उसके मित्र थे, उनको बेटी हुई थी उस समय, वो बेटी को लेकर के आया। बच्चा हुआ ये तो मालूम हुआ कंस को, लेकिन बेटी लेकर आया। तो देखो पांव रखा और जमुना नीचे चली गई। तो बाबा कहते हैं नदी में पैर डाला तो वो नीचे चली गई। अब विचार करो मनुष्य क्या क्या बातें बना देते हैं, बना सकते हैं। अब बाप समझाते हैं कोई भी उल्टी सुलटी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं, बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। इस देह को भी भूल जाओ, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर पाठ बजाती है। अब बाप कहते हैं ये छीछी वस्त्र है, ये शरीर रूपी वस्त्र छीछी है। आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। ये श्याम सुंदर बाबा कहते शरीर के लिए नहीं है, आत्मा के लिए श्याम सुंदर। आत्मा पवित्र थी तो सुंदर थी, फिर काम चिता पर बैठने से काली बन गई। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो ये खाद निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, कंगाल हो, गरीब हो। वहां सतयुग में फिर तुम सोने के महल बनाएंगे। वंडर है, क्या वंडर, यहाँ हीरा हीरो को देखो कितना, हीरो का देखो कितना मान है। सच्चा सोना तो देखने में नहीं आता, सब नकली है। हाँ, हीरा भी सब नकली। यहाँ हीरो का देखो कितना मान है, और वहां ये हीरे कैसे होंगे, बाबा कहते पत्थरों मिसल होते हैं। सतयुग में देवताओं के बच्चे कैसे खेलेंगे, या तो पत्थरों से खेलते हैं ना, वो गोटी भी तो पत्थर ही है ना, उससे खेलते हैं। तो सतयुग में हीरों से खेलेंगे। तो बाबा कहते हैं वहां तो पत्थर मिसल होते हैं, हीरे भी। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियां भर कर ले आते हैं। सागर से जितना भी चाहिए उतना लो, खानियां ही भरती हो जाती है सतयुग में। तुमने साक्षात्कार किया है। अब ये कहानी भी दिखाते ना, माया मच्छंदर का खेल शास्त्रों में है, माया मच्छंदर का खेल। तो माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी है, तो ले जाता हूं। अब वो साक्षात्कार किया तो सोचा ये सोने की ईंटें इतनी पड़ी है, मैं ये ले जाता हूं। और नीचे आया तो कुछ भी नहीं था, ये तो साक्षात्कार केवल किया था सोने की ईंटों का। अब वहां सतयुग में तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए तो खुशी का पारा चढ़े। बाप का परिचय देना है, शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, ये किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था, कल्प कल्प तुमको ही सिखाएंगे। जो जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है, केवल देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं विराट रूप में। देवताएं सिर में, क्षत्रिय भुजाओं में, आप और फिर वैश्य पेट में और शूद्र पांव में, बस, पर चोटी नहीं दिखाते। तो उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है, वो है जिस्मानी। लौकिक में भी ब्राह्मण जो होते हैं ना, वो अपने आप को बहुत बड़ा नशा होता है, मैं तो ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है, अब वो है जिस्मानी। तुम हो, तुम कौन से ब्राह्मण हो? लौकिक में नहीं भी होंगे, लेकिन तुम हो रूहानी ब्राह्मण। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो, यही सत्य नारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। ये मृत्यु लोक खत्म होना है, तो शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूं। ये कोई नहीं कह सकता है मनुष्य, मैं तुमको लेने आया हूं, ये भगवान ही कह सकते हैं। मैं तुमको लेने आया हूं, कितनी ढेर आत्माएं होगी। आत्मा वापस घर में जाती है तो कोई आवाज थोड़ी होता है। अंत में जब मनुष्य शरीर छोड़ेंगे और आत्माएं सब उड़ेगी अपने वतन, तो उसमें कोई आवाज थोड़ी होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है, करके जाते ना, आवाज कितना होता है। परंतु आत्माएं जब घर जाएगी तो कोई आवाज नहीं होगा। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज कितना होता है, रानी के पिछाड़ी मधुमक्खियां सब भागती है। रानी उनकी हेड होती है, उनके पीछे सब मधुमक्खियां भागती है। उनकी आपस में कितनी एकता है, वो रानी के पीछे सब भागते हैं, ऐसे नहीं कि कहीं और चले जाएंगे, वो रानी के पीछे सब एक साथ भागते हैं, तो कितनी एकता है। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ का है, तुम मनुष्य से देवता बना देते हो, पतितों को तुम ज्ञान की भूभू करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी प्रवृत्ति मार्ग है, परंतु उसमें भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। वंदे मातरम, अभी वंदे मातरम को कितना आगे बढ़ाया है ना हमारी सरकार ने, तो बाबा कहते हैं इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी वो जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है, बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे नवाब और दश दश दश। रुलेंगे पिनेंगे, सिंधी शब्द है ये, रुलेंगे माना बस इधर उधर घूमते रहेंगे, और पिनेंगे माना मांगते रहेंगे, तो वो सब होंगे खराब। तो लिखेंगे पढ़ेंगे होंगे नवाब, रुलेंगे पिनेंगे होंगे खराब। राजा बनना अच्छा है वा नौकर बनना अच्छा है? हाँ, कौन कहेगा नौकर बनना अच्छा है? पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा हम क्या बनेंगे, फिर पछताएंगे हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। हाँ, फिर कहेंगे ना, अब पछतावत क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं फॉलो करो, ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए। अभी बाबा तो कहते हैं बड़ा मकान है, कमरे बहुत है, तो एक कमरा गीता पाठशाला के लिए रखो, जहाँ करके ले वे। परंतु ऐसे नहीं जो चाहे सो गीता पाठशाला बना दे वे, बाबा उसके लिए भी क्राइटेरिया बताते हैं ना, कोई नियम है। तो ऐसे भी नहीं कि कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं। अब वो परिवार भी तो वहीं रहता है, एक कमरा बाबा को दिया और वो खुद मीट आदि खाते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ चिल्लाते रहते हैं, तो वहाँ थोड़ी गीता पाठशाला बन सकती है। और वो भिखारी है तो एक कमरा दे दिया, क्या बड़ी बात है। तो ऐसे तो बाबा कभी नहीं गीता पाठशाला खुलवाते हैं। ऐसे भी नहीं कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं। वो पुण्य आत्मा वो पाप आत्मा, घर वाले सब पाप आत्मा, और वो ये चलो एक ज्ञान में चली और उसने कमरा बनवाया गीता पाठशाला के लिए, तो बाकी परिवार तो सब पाप आत्मा। तो वो पाप आत्मा वो पुण्य आत्मा, फिर आश्रम तो नहीं रहेगा ना, वहां पर वो गीता पाठशाला नहीं चल सकती है। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी तो स्वर्ग में होने चाहिए। गीता पाठशाला खोलना जैसे घर में स्वर्ग बनाना, तो खुद भी तो स्वर्ग में होने चाहिए। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरना है, बाप को याद करना है। पवित्र बनाकर ही बाप साथ ले जाएंगे, तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। कितनी भारी लॉटरी मिलती है, बाप को जितना याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। उनको कहा ही जाता है प्यार का सागर, तुम भी ऐसे बनो, सब प्यार का सागर बनो। अगर किसको दुख दिया, रंज किया, नाराज किया, तो रंज होकर मरेंगे, दुखी होकर मरेंगे। ये बाबा श्राप नहीं दे रहे हैं, ये वास्तविकता है, ये कर्मों की गुह्य गति है। ये कोई बाबा श्राप नहीं देते हैं, समझाते हैं, सुख दो तो सुखी होंगे। सबको प्यार करो, सबको प्यार करो, बाबा भी तो प्यार का सागर है ना। कितने चले गए फिर वापस भी आए, बाबा ने स्वीकार भी किया ना, बाबा तो प्यार का सागर है। तो बाबा भी प्यार का सागर है, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी भी उल्टी सुलटी बात पर विश्वास नहीं करना। जो भी उल्टा पढ़ा है उसे भूल, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। उल्टी सुलटी बातों पर विश्वास नहीं करना, जो उल्टा पड़ा हुआ है उसको उससे भूल अशरीरी बनना, आशीर्वाद पर नहीं चलना, पवित्र बनना, हर कदम बाप को फॉलो करना, दुख नहीं देना, नाराज नहीं करना। वरदान, सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़, एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़, एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। अब संपूर्ण वफादार किसको कहेंगे? संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। क्या दिखाई दे? हाँ, संकल्प में व स्वप्न में सिवाय बाप के, बाप के कर्तव्य, बाप की महिमा, बाप के ज्ञान और कुछ भी नहीं दिखा दे, केवल वो ही दिखाई दे। एक बाप दूसरा न कोई, बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसीलिए पहला वायदा है, जब बाबा के बने तो क्या वायदा किया बाबा से हमने, इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। इस वायदे को निभाना, अर्थात इस वायदे को निभाना और संग तोड़ एक संग जोड़, इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। स्लोगन, सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। अव्यक्ति शारे, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो के अंतर्गत हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, ये याद रहने से एक रस अवस्था रहेगी। कैसे रहेगी एक रस अवस्था? हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, ये याद रहने से एक रस अवस्था रहेगी। जब एक से संबंध रहता है तब अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहां संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहती है। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए नहीं देखो। एक रस अवस्था बनानी है तो क्या करो? सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए नहीं देखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा।
शांति। आज शुक्र गुरुवार है और हम सब मिलकर के बाबा के पास जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। लेकिन जैसा आपको कल भी बताया था और परसों भी बताया था, हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी के निमित्त हम सब मिलकर के प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। और हमारे जगदीश भाई जी को तो सभी भाई बहने जानते हैं, कईयों ने उनको सम्मुख नहीं देखा है या साकार में नहीं देखा है, परंतु उनके द्वारा जो साहित्य है वो बाबा के बच्चे और देश विदेश के, चाहे बीके या नॉन बीके, उस साहित्य के द्वारा पूरा ही लाभ और बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। अभी मैं ये जानना चाहूंगी, जिन्होंने जगदीश भाई जी को नहीं देखा वो हाथ खड़ा करो, ये बात की है, और जिन्होंने जगदीश भाई जी को देखा वो हाथ खड़ा करो, वो भी बहुत है, क्योंकि जगदीश भाई ज्ञान के अंदर बहुत ही एक्यूरेट और एक्यूरेट के साथ साथ ज्ञान की हर बात को इतना अच्छी रीति स्पष्ट करते थे, और जितना गंभीर उतना रमणीक और बहुत प्यार भी करते थे, और उन्होंने यज्ञ के कई सेवाओं के अंदर अपने विचारधारा के द्वारा कई क्रिएटिव सेवाएं भी आरंभ कराई, जैसे कि सभी विंग्स की जो स्थापना हुई उसका प्रेरणा विशेष करके जगदीश भाई जी ने दिया था। और जब दादी जी कहती थी, बाबा मुरली में बताते थे कि साधु संतों की भी सेवा की जाए, उसके लिए भी बहुत प्लानिंग और किस प्रकार से सिस्टम रहे, जगदीश भाई जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से कराया। महात्माओं की और राजाओं महाराजाओं की, उनकी सेवाओं को गिनती करें तो उतना ही कम है। बहुत प्यार से सेवा भी करते, रमणीक भी थे, हंसाते भी थे, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं कि हमें यज्ञ की हर मर्यादा का पालन करना है, मर्यादाओं के लिए स्ट्रिक्ट रहते थे। बाकी हमेशा कहते थे कि ब्राह्मण परिवार में हंसो खेलो बैठो, तो बहुत हंसाते भी थे, और कभी कभी गीत कविता के द्वारा भी खुद बनाते और गीत कविता के द्वारा भी सबको बहलाते रहते थे। तो आज हम सब मिलकर के प्यार भरी भावनाएं लेकर के बाबा के पास वतन में जाएंगे, बाबा को भी भोग स्वीकार कराएंगे, जगदीश भाई जी को भी कराएंगे, इसके अलावा अन्य कई भाई बहनों के भोग हैं वह भी बाबा को याद प्यार देंगे। अच्छा, जो भाई बहने भोग के लिए वतन में जाएंगे हाथ खड़ा करो, सबको जाना है, किसी को मिस नहीं करना है। अगर एक ने मिस किया तो बाबा आपको उलहना देंगे। कई बार बच्चे बाबा को कहते, बाबा हम देरी से क्यों आए, बाबा कहते देरी से कहाँ आए, बाबा तो सामने बैठा है। बाबा कहते जब चाहो जिस समय चाहो मेरे पास आ जाओ वतन में, और मेरे से जो भी लेना लो। और बाबा तो लुटाते ही रहते हैं, लुटा रहे हैं बाबा, लेकिन लेने वाले थक जाते हैं, देने वाला थकता नहीं है, लेने वाले थक जाते हैं। तो आज किसी को भी मिस नहीं करना है, सभी को बाबा के पास जाना है, और बाबा को हम सब मिलकर के भोग स्वीकार कराएंगे, और जगदीश भाई जी को भी विशेष आप सबकी याद प्यार और भोग स्वीकार कराएंगे। भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगी, 1 लाइन होगी ये जो ब्लैक स्टैंड है वो भाइयों की लाइन होगी, और 1 लाइन होगी भट्टी के भाई, हाथ खड़ा करो, भट्टी के भाई सब इस बीच में आएंगे अमृत पीने के लिए, और 1 लाइन होगी भट्टी की बहनों की, ये जो कैमरा है दूसरे नंबर का उस तरह भट्टी के बहने होंगी, और बाकी 2 लाइनें होंगी अन्य बहनों की। तो भट्टी की टीचर्स बहने और भट्टी की बहने इस कैमरा के पास लाइन लगाएंगी, लेकिन जब भोग संदेश पूरा होगा उसके बाद ही, पहले नहीं उठना है, किसको पहले नहीं खड़ा होना है, तो इसलिए इस बात का भी सबको ध्यान रखना है। अच्छा, अभी हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे बोलो, कहाँ जाएंगे, बाबा के पास वतन में जाएंगे, और आप सभी को यही संकल्प करना है, केवल एक संदेशी नहीं, हम भी बाबा के पास भोग लेकर के जा रहे हैं, और भोग की थाली हम सबके सामने रखी है, हम भी बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। अच्छा, ओम शांति।
अपरंपार उड़ जा प्यारी
बस और ना हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
गुरुवार के दिन आप सबकी स्नेह भरी यादों के साथ, जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाते क्या देखती हूं कि मैं जा रही हूं और एक तरफ रास्ता बहुत कंजेस्टेड है और दूसरी तरफ बहुत सुंदर बगीचे और दूसरी तरफ देखती हूँ खाई है और एक तरफ फलों के बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई दे रहे थे। लेकिन रास्ता ऐसा था कि एक इंच ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते, तो मैं सोच में पड़ गई कि आज ये क्या है। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा मैं तो आपके पास आ रही हूँ, इतने में क्या देखती हूँ कि एक फरिश्ता मेरे पास आया और वो फरिश्ता उड़ते उड़ते, जैसे फरिश्ता उड़ता है उसके पीछे मैं भी उड़ती हुई ऐसे स्थान पर जाकर के पहुंचे। बहुत सुंदर पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर बाबा और जगदीश भाई दोनों कोई गहरी बात पे आपस में चर्चा करते हुए दोनों मगन दिखाई दे रहे थे और कुछ सेकंड तक तो मैं देखती रही। थोड़ी देर के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा, कहा आओ बच्ची। मैंने कहा बाबा आज तो ये इस प्रकार से दृश्य था। बाबा ने कहा कि बच्चों के सामने वर्तमान क्या चल रहा है, एक तरफ प्राप्ति, दूसरी तरफ आकर्षण और तीसरी तरफ जो बच्चों के सामने अभी जो चलता है अपनी स्थिति को पावरफुल नहीं बना पाते हैं। तो बाबा ने खास ये दृश्य दिखाया, क्यों नहीं बना पाते हैं, कई बार बच्चे अनेक प्रकार की ना सोचने वाली बातों में भी सोच करके हलचल क्रिएट कर देते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को बाबा ने पहले से ही बता दिया है ये परिस्थितियां जो भी हैं ये आपको प्राप्ति कराने वाली हैं और चारों तरफ ही संगम युग के अंदर प्राप्ति ही प्राप्ति है, लेकिन बच्चों को विशेष ध्यान रखना है कि बाबा की तरह अपने स्टेज को हल्का और साक्षी होके रखे। फिर बाबा जगदीश भाई जी की तरफ देखने लगे और बाबा ने कहा, देखा ये बच्चा कैसे एग्जाम्पल रहा। यज्ञ की शुरुआत में तो क्या, जब इन बच्चों ने बाप को पहचाना, कई बातें सामने आई, लेकिन एक निश्चय और बाप के प्यार ने हर बात को इतना महान और ऊंच बना दिया, जो बच्चे ने भी अनुभव किया और कराया। तो मैंने कहा, बाबा आज तो आप बहुत गहरे रूहान में मगन थे। बाबा ने कहा, अच्छा। तो बाबा मुस्कुराने लगे और जगदीश भाई भी मुस्कुराने लगे, क्योंकि जैसे कोई अंदर की गुप्त बात कर रहे हूँ। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे क्या कर रहे थे, आप पूछती हो। मैंने कहा, सब पूछ रहे हैं। तो बाबा ने क्या दिखाया, एक बहुत सुंदर नक्शा था और उस नक्शे के अंदर एक तरफ नई दुनिया की सारी व्यवस्थाएं थी, नई दुनिया की किस प्रकार से होगा वो सारा था, और दूसरी तरफ उस नई दुनिया के स्थान पर पहुंचने के लिए बीच में छोटा सा ऐसे लाइन दिखाई दे रही थी, और उस लाइन के ऊपर लिखा हुआ था, अपनी अवस्था को मजबूत करें। तो बाबा ने कहा, जब अपनी अवस्था को मजबूत करते हैं तो नई दुनिया तो सुव्यवस्थित है ही, और वहां की सुव्यवस्था का अनुभव इस संगम युग पर भी बच्चों को करना है। तो जगदीश भाई तो बहुत मुस्कुरा रहे थे और कहा कि देखो बाबा, बीच बीच में मुझे वतन में बुला करके बच्चों के पास ले जाते हैं। एक तो बच्चे जो सेवाएं कर रहे हैं, बाप से प्यार के अनुभव कर रहे हैं, और बच्चे संगठन में रह करके बहुत सुंदर सेवा की प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी देख के खुशी होती है। लेकिन फिर लेकिन बोला, बाबा ने कहा, बोलो ना लेकिन क्या। बाबा ने कहा, सब कुछ करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात में कोई लीकेज रह जाता है। उस लीकेज के कारण एक तरफ प्राप्ति भी है, दूसरी तरफ कभी कभी बच्चे ऐसा महसूस करते हैं कि जो प्राप्त होना चाहिए था वो कम है। तो बाबा ने कहा, अब क्या करना है। जगदीश भाई से पूछा, बताओ क्या करना है। तो वो मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, आप जगदीश भाई ने कहा, बाबा आप तो हर बच्चे को भरपूर करते हैं। तो बाबा ने कहा, ये जो बीच बीच में लीकेज आ जाते हैं, इस लीकेज को भरने के लिए अपना जो लिंक है बाबा के साथ, उस लिंक को पावरफुल प्योर बनाना है, उससे लीकेज भरपूर हो जाएगा और अवस्था भी मजबूत और साथ साथ हर कार्य सफल होगा। तो फिर बाबा ने कहा, अच्छा अभी बाबा चलते हैं, जगदीश भाई को लिया और मेरे को भी साथ में लिया। तो जैसे हम गए तो एक बहुत सुंदर जैसे पैनोरमा होता है ना, बहुत बड़ा हॉल और चारों तरफ से कवर था। तो बाबा उसमें गए, हम अंदर गए, तो एक तरफ देखा कि बहुत बड़ा पहाड़ था और दूसरी तरफ देखा कि रंग बिरंगी चीजें सजी हुई थी, तीसरी तरफ देखा कि चंद्रमा स्टार्स ऐसे चमचम कर रहे हैं, और चौथी तरफ देखा कि वहां पर बहुत सुंदर आर्ट्स की चीजें चमचमाती हुई दिखाई दे रही थी। तो बाबा जैसे पहाड़ की ओर गए, मैंने कहा, बाबा ये तो पहाड़ है। बाबा मुस्कुराते कि तो ध्यान से देखो पहाड़ के पीछे क्या देखती हूँ, इतनी सारी पुस्तकें थी, इतनी सारी पुस्तकें थी जैसे कि पहाड़ की तरह रखी हुई थी। बाबा ने कहा, देखा इस बच्चे ने बाप की सत्य ज्ञान को सत्यता से ऐसा प्रस्तुत किया और जो मान्यताओं के कारण लोग भ्रमित हो गए, उस भ्रम को दूर करने के लिए, सत्य ज्ञान को प्रकट करने के लिए बच्चे ने निडर और ऐसा मजबूत होकर के उन सत्य बातों को लिखा जो सबके सामने एक दिव्यता का जैसे चक्षु खोलने वाला हो ऐसा बच्चे ने अनुभव किया। अभी भी लोग उस बात को मानते हैं। तो दूसरी तरफ जो रंग बिरंगी चीजें देखी थी, तो देखते ही क्या हुआ कि रंग बिरंगी चीजें ऑटोमेटिकली सेट होने लगी। तो बाबा ने कहा कि बाबा हमेशा चाहते थे कि बच्चे अपने जीवन के अंदर हर कार्य को एक्यूरेट करें, और ये बच्चे ने भी एक्यूरेट करने के लिए, एक्यूरेसी को एडॉप्ट करने के लिए, अपनी आंतरिक अवस्था को मजबूत करने के लिए कई व्यवस्थाएं बनाई जो ब्राह्मण जीवन की कल्चर को मजबूत करने लगे। फिर बाबा ने दिखाया जैसे कि वहां रंग बिरंगे स्टार्स जो दिखाए थे, बाबा ने कहा बच्चा हमेशा ही ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ब्राह्मण परिवार के जो स्टार्स हैं उनके साथ मिल करके हमेशा सेवा की नई प्लानिंग ऐसे करते थे कि ये स्टार्स जगमगाते हुए लाइट बनकर के सारे विश्व के अंदर सत्यता की प्रत्यक्षता करें। फिर चौथे पोष में जब देखा बहुत प्रकार की कई कलाकृतियां बनी हुई थी, उसको देख करके मुस्कुराने लगे और वो कलाकृतियों की एक माला बन गई और बाबा के पास आ गई। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा बच्चे ने 16 कलाएं संपन्न, क्या होंगी 16 कलाएं उसके बारे में भी बच्चों को बहुत अच्छे, बाबा ने तो बताया उसको स्पष्ट करके दिया। फिर वो कलाकृतियों को देख के मुस्कुरा रहे थे। फिर मैंने बाबा को कहा बाबा इस बार जगदीश भाई जी के जो विशेष सेवा अर्थ सिल्वर जुबली के निमित्त सभी सेंटर्स वालों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए और बाबा के साथ के अनुभव शेयर किए, तो बाबा को मैंने बताया कि दिल्ली किंग्सवे कैंप के भाई बहनों ने कलाकृतियों के द्वारा भी बाप की प्रत्यक्षता की सेवा की। बाबा ने कहा ब्राह्मण और देवताएं सदा ही जीवन के अंदर कलाओं से संपन्न हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन की जो कलाएं हैं वो इतनी ऊंच हैं जिसके अंदर सदा खुशी और प्राप्ति है। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा जिसने भी जिस प्रकार भी सेवा की है तो बाबा भी उन सेवाओं को देखकर खुश हो रहे हैं, और जगदीश भाई तो कहते बस कमाल है बाबा के बच्चों की, एक ही लगन बाप को प्रत्यक्ष करना है। फिर बाबा ने जगदीश भाई जी को भोग स्वीकार कराया। जगदीश भाई कहते बाबा नहीं, सभी भाई बहनों को बुलाओ, मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। तो बाबा ने कहा अच्छा खिलाओ, नहीं कहते भोग तो मैं खिलाऊंगा लेकिन इनको सौगात भी देनी है। तो बाबा ने कहा अच्छा मैं भोग खिलाता तुम सौगात दो। तो बाबा ने सबको अपने हाथ से भोग खिलाया और जगदीश भाई जब सौगात देने लगे उसमें एक डिब्बी थी, सिल्वर डिब्बी, उस डिब्बी के अंदर गुलाब की पंखड़ियां जो थी वो अलग अलग पंखड़ियां पड़ी हुई थी। तो मैं सोचा ये क्या पंखड़ियां दे रहे हैं। तो जैसे जगदीश भाई देने लगे उन पंखड़ियों के बीच में एक लिखा हुआ था कि बाबा करण करावन हार है। तो वो जब शब्द को पढ़ते थे वो सब पंखड़ियां जो है एक सुंदर फूल, और उस फूल के साथ साथ हर प्रकार की जो कलाएं हैं वो प्रस्तुत होती जा रही थी। तो बाबा ने कहा बच्चों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना ही है, लेकिन निमित्त भाव करण करावनहार बाबा है, बाबा कराना है, तो बाबा ने सबको भोग स्वीकार कराया। और जगदीश भाई जी ने वो सिल्वर डिब्बे के अंदर कि सदा सितारे की तरह चमकते रहे और निमित्त भाव कराने वाला बाबा, तो इस भाव से अपनी अवस्था भी ऊंची और हर प्रकार से संपन्न बनेंगे। फिर बाबा ने सभी भाई बहनों को इमर्ज करते हुए कहा, आज तो गुरुवार के भोग के लिए भारत और विदेश के बच्चे बाबा के पास पहुंचे हैं। बाबा ने सबको याद प्यार भी दिया और दृष्टि से निहाल भी कर रहे थे और भट्टी वालों के लिए कहा कि विशेष बाप के साथ का अनुभव करने के लिए अपने ही घर में पहुंचे हैं। और जिनके भोग थे उनको भी इमर्ज करते हुए बाबा उनको दृष्टि के द्वारा वरदान दे रहे थे का भोग का संकल्प करना, अपने अंदर शक्ति भरना और जिसके निमित्त करते हैं उसको भी शुभ वाइब्रेशन के द्वारा विशेष अनुभव कराना होता है। इसलिए बाबा सब बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। ओम शांति।